आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है लाइव हिंदुस्तान प्रोडक्शन।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें।
भारत के लिए कई मोर्चों पर खतरा पैदा कर रहा चीन। पैसे बहाकर बॉलीवुड से लेकर यूनिवर्सिटी क्षेत्र तक में बढ़ा रहा दखल। चीन कई मोर्चे पर भारत के लिए खतरे पैदा कर रहा है। एक भारतीय थिंक टैंक ने अध्ययन में दावा किया है कि चीन एक रणनीति के तहत भारत में कई क्षेत्रों में दखल बढ़ा रहा है। यह क्षेत्र फिल्म, विश्वविद्यालय, सामाजिक संस्थान, सोशल मीडिया, थिंक टैंक एवं तकनीकी उद्योग हैं। हाल के वर्षों में एक नपीतुली रणनीति के तहत चीन का दखल बढ़ा है। लॉ एंड सोसाइटी अलायंस की तरफ से जारी 76 पृष्ठ की एक रिपोर्ट मैपिंग चाइनीज फुटप्रिंट एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन इन इंडिया में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट विगत 3 सितंबर को जारी की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने रणनीतिक क्षेत्रों में अपना निवेश बढ़ाया है, जिसके पीछे बीजिंग का गुप्त एजेंडा है। वह आम भारतीय या मतदाता की राय को एक खास आकार देना चाहता है। आलम यह है कि चीन फिल्म उद्योग से लेकर तमाम क्षेत्रों में अपना निवेश बढ़ा रहा है। फिल्म उद्योग की बात करें तो चीनी कंपनियां सह प्रोडक्शन के रूप में कार्य कर रही है। पंजशीर में बढ़ा तालिबान का खूनी संघर्ष, रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता फहीम दश्ती की मौत। रिपोर्ट। अफगानिस्तान पर कब्जे के बावजूद पंजशीर से दूरी रहने के बाद अब तालिबान ने इस इलाके में जंग शुरू कर दी है। दोनों पक्ष पंजशीर में अपना अपना दबदबा होने का दावा कर रहे हैं। पहले तालिबान ने रविवार को दावा किया कि उसने पंजशीर प्रांत के सभी जिलों पर नियंत्रण कर लिया है और अब खबर है कि इलाके में जारी गोलीबारी के बीच रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता की मौत हो गई है। रेजिस्टेंस फोर्स से जुड़े कई ट्विटर हैंडलों से भी रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता फहीम दश्ती की मौत की जानकारी दी गई है। एक ट्वीट में लिखा है, भारी मन से हम रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता फहीम दश्ती की तालिबानी आतंकियों के हमले में हुई मौत की जानकारी दे रहे हैं। हालांकि ट्वीट में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बताया गया है। महाराष्ट्र में हर दिन बढ़ते कोरोना के केस, तीसरी लहर की दस्तक। इन 7 जिलों ने बढ़ाई टेंशन। महाराष्ट्र में कोरोना की मामूली राहत देखने के बाद एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। यहां कोरोना मामले अब घटने की बजाय बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उद्धव सरकार लगातार बैठ के करके आने वाली तीसरी लहर को रोकने की कोशिशों में लगी है। रविवार को सरकार ने एक बैठक की जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र में 7 जिले चिंता का सबब बने हुए हैं, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने देखे जा रहे हैं। इन राज्यों में पुणे, मुंबई, सांगली आदि शामिल हैं। कुछ ही दिनों में राज्य में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाना शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है। महाराष्ट्र सरकार की रविवार को हुई बैठक में पुणे सहित राज्य के 7 पश्चिमी जिलों को चिंता के क्षेत्र कहा है। सरकार को डर है मामलों में जो उछाल देखने को मिल रहा है वह तीसरी लहर की दस्तक हो सकती है। पिछले 10 दिनों में मामलों की संख्या में कोई गिरावट नहीं देखी गई है, इसके बजाय नए संक्रमणों में मामूली उछाल आया है। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने मुंबई में हुए सम्मेलन में यह जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में न हो जाए बंगाल जैसा हाल, चुनाव रणनीति को लेकर दोराहे पर कांग्रेस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव रणनीति को लेकर कांग्रेस दोराहे पर खड़ी है। पार्टी को कोशिश है कि पश्चिम बंगाल की तरह उप्र में भी भाजपा की शिकस्त हो, पर वह बंगाल की तरह खुद को खत्म करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसलिए पार्टी चुनावी रणनीति को लेकर दूसरे गैर भाजपा दलों के रुख का इंतजार कर रही है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा तबका चुनावी गठबंधन की वकालत कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं की दलील है कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो पिछला प्रदर्शन दोहराना भी मुश्किल होगा, पर अभी तक गठबंधन को लेकर कोई तस्वीर नहीं बनी है। ऐसे में पार्टी खुद को अकेले चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी अपनी मजबूत सीट की पहचान कर संभावित उम्मीदवारों से चर्चा कर रही है। वर्ष 2017 के चुनाव में जिन सीट पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही या वर्ष 2012 में जीती थी, उन उम्मीदवारों से भी चर्चा चल रही है। इन उम्मीदवारों से कहा गया है कि वह चुनाव की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि कई सीट पर पार्टी को पिछले चुनाव में अच्छे वोट मिले थे, पर इस बार वह उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, तो उसकी जगह नया प्रत्याशी तलाश किया जा रहा है। देश छोड़कर भाग सकते हैं अनिल देशमुख। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ लुकआउट नोटिस। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ईडी ने यह लुकआउट नोटिस 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप के मामले में जारी किया है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद देशमुख देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। बता दें कि वसूली के आरोपों के बाद अनिल देशमुख को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के सूत्रों ने कहा कि देशमुख को देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। ईडी ने अनिल देशमुख को अब तक 5 बार समन भिजवाया है, लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HTSmartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
आप सुन रहे हैं HT Smartcast और ये था लाइव हिंदुस्तान प्रोडक्शन HT Smartcast।